सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं भगवान श्री राम के इस अद्भुत ऐश्वर्य के प्रदर्शन से। ये कार्य शिव जी के अलावा इस भौतिक ब्रह्मांड में संपन्न करना असंभव था। केवल भगवान ही ये कार्य कर सकते थे और उन्होंने कर दिया। जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, यद्यपि ये कार्य हमें बहुत अद्भुत लगे, भगवान के लिए ये अद्भुत नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति असीमित है और अचिंत्य है। श्री राजीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तब तक हम भगवान को कदापि समझ नहीं पाएंगे। उपनिषदों में भी कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविक रूप से भगवान की अनंत शक्तियां उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। केवल उनके इच्छा करने मात्र से, उनके केवल चाहने से उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को उठाया, अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया, परंतु आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी इच्छा मात्र से धनुष आसानी से उठा के तोड़ भी सकते थे, अपने इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नाश करते हैं, तो फिर एक धनुष उठाना और तोड़ना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए। परंतु क्योंकि भगवान मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, इसलिए मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य और भगवान श्री राम अर्थात उनके जितने भी अवतार हैं, उनके कार्य बहुत अद्भुत हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन नृशिशियादहसु तत् अत्यंत विडंबनम्। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको समझना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो आप अजन्मे हैं, वैसे तो आपको कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजस्य, अज हैं आप और अकर्तु हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म भी करते हैं। हे विश्वात्मन, हे समस्त विश्व के आत्मा, समस्त विश्व के प्राण, कार्य करने की आवश्यकता न होने पर भी आप कार्य करते हैं और आप अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप यहां जन्म लेते हैं तो तरह तरह के योनियों में आप जन्म लेते हैं। वैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की ही है, अहम बीज प्रदाय पिता, मैं समस्त योनियों का पिता हूं, बीज प्रदाता हूं मैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदाय पिता। 84 लाख योनियों के बीज प्रदाता भगवान ही है। तिर्यन, परंतु फिर भी आप अपने बनाए हुए सृष्टि के भीतर आप प्रकट हो जाते हैं, पशुओं के समाज में, नृत मनुष्यों के समाज में, ऋषि ऋषियों के समाज में, यादहसु जलचर प्राणियों के बीच में आप प्रकट होते हैं। वास्तव में बड़ी विडंबना की बात है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो अब भगवान मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, परंतु हम ये नहीं समझना चाहिए कि श्री राम एक मनुष्य है। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न प्रकट हो जाएं। जब उन्होंने मत्स्य अवतार के रूप में जब वो प्रकट हुए तो मछली जैसे कार्य उन्होंने किए, परंतु वो मछली नहीं थे, वो भगवान ही रहे। कूर्म अवतार जब बने, कछुए बने, परंतु एक साधारण कछुए नहीं थे। उसी तरह से जब वो नरसिंह का रूप लेते हैं या किसी और रूप में भी, वो भगवान ही रहते हैं हर अवस्था में। भगवान कोई पद नहीं है जिसकी प्राप्ति कोई तपस्या के बल पर, धन के बल पर, योग्यता के बल पर प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल भगवान है, भगवान के अलावा और कोई भगवान नहीं बन सकते। जो भगवान नहीं है वो कभी भगवान नहीं बन सकते। जो भगवान है वो सदैव भगवान थे, हैं और रहेंगे, और जो भगवान नहीं है वो कभी भी भगवान नहीं थे, अब भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं बनेंगे। तो भगवान श्री राम आके मनुष्य समाज में प्रकट होके इन लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए, हमें श्रवण कीर्तन के विषय प्रदान करने के लिए। तो श्री रामचंद्र ने ऐसे शिव जी का धनुष उठाया, तोड़ दिया। राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, साथ साथ प्रसन्न भी हुए कि अंततः मेरी पुत्री सीता के लिए अब एक योग्य वर प्राप्त हो चुका है। तुरंत महाराज जनक ने अपने सिपाहियों को, अपने दूतों को भेजा अयोध्या दशरथ महाराज को खबर पहुंचाने के लिए और उनको निमंत्रण करने के लिए विवाह के लिए। तो 3 दिन लगे उन दूतों को पहुंचने के लिए अयोध्या। राजा दशरथ ने खबर सुन ली, बहुत ही प्रसन्न हुए। वैसे भी जनक महाराज उनके बहुत प्रिय मित्र थे, अपने मंत्रियों से, विशेष करके उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि और वामदेव आदि ऋषियों से उन्होंने विचार विमर्श किया और तुरंत चल पड़े अयोध्या से मिथिला की ओर। उनके साथ में ऋषि मुनिगण थे, सैनिक थे, और उन्हें 4 दिन लगे मिथिला पहुंचने के लिए। जब पहुंचे तो वहां पर राजा जनक ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। पहुंचते ही दशरथ महाराज जनक महाराज को आलिंगन करके बहुत प्रेम के वचन बोलने लगे। दशरथ महाराज की ओर से वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज के वंशावली का वर्णन किया। ये प्रथा हुआ करती थी कि जब दो ऐसे कोई अनुष्ठान में, विशेष करके क्षत्रियों के समाज में, वंशावली का वर्णन करना आवश्यक हुआ करता था। उधर दशरथ महाराज के साथ में वशिष्ठ मुनि आदि आए थे, तो उन्होंने श्री राम और सीता के विवाह की तैयारियां शुरू करना चाहा। और दशरथ महाराज ने जनक महाराज से कहा कि ठीक है, अब हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। जनक महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए, सारी तैयारियां तो शुरू हो ही गई थी। उस समय दशरथ महाराज के वंशावली को सुन के सभी लोग प्रशंसा करने लगे। वैसे शुरुआत हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि। याद रखिएगा, ये मरीचि वो मारीच नहीं है जिनकी चर्चा हम कल कर रहे थे। मारीच तो एक असुर थे, ताटका राक्षसी का पुत्र था वो, और ये मरीचि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। तो मरीचि से उत्पन्न हुए कश्यप, और कश्यप से आए विवस्वान, विवस्वान से आए वैवस्वत मनु, उनसे आए इक्ष्वाकु, और ऐसे राजाओं के वंश आगे चलता गया। आगे चल के सगर राजा, जिनका वर्णन हम कल कर रहे थे, अंशुमान, राजा दिलीप, भगीरथ, आगे चल के रघु, जिनके पीछे रामचंद्र का नाम रघुनंदन या रघुवीर पड़ा है, सारे वंश को राघव वंश भी कहते हैं। फिर आगे चल के अज, जो कि दशरथ महाराज के पिता थे, वंशावली के वर्णन के बाद फिर जनक महाराज की वंशावली का वर्णन हुआ। जनक महाराज की वंशावली भी उतनी ही महान थी। इक्ष्वाकु राजा के वंश में ही आते थे वो, महाराज निमि के वंशज थे। तो उनकी वंशावली समाप्त करके अब आगे दोनों ही विवाह की तैयारी करने लगे। जनक महाराज ने अपने वचन दिए कि मैं अभी मेरी पुत्री को श्री राम के हवाले करना चाहता हूं। अनेक अनुष्ठान हुए और विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ ने राजा जनक से निवेदन किया कि आपके छोटे भाई कुशध्वज की भी दो कन्याएं हैं, जैसे आपके दो कन्याएं हैं, तो इनका विवाह आप भरत और शत्रुघ्न से कराइए। जब ये प्रस्ताव जनक महाराज ने सुना और भी प्रसन्न हुए, और कुशध्वज राजा वहां थे। वैसे जनक महाराज का नाम था शिरध्वज। ये जनक ये एक पदवी है। निमि महाराज के वंश में आने वाले एक राजा थे जनक, जो पहले जनक थे, और ऐसे अनेक जनक जनक महाराज हुए हैं। तो जो जनक महाराज सीता देवी के पिता थे उनका नाम था शिरध्वज, उनके छोटे भाई थे कुशध्वज। तो जनक महाराज के दो कन्याएं थी, एक तो थी सीता देवी, दूसरी थी उर्मिला। तो जनक महाराज ने तय कर लिया कि सीता देवी को मैं श्री राम से विवाह कराऊंगा और उर्मिला का हाथ मैं लक्ष्मण जी को सौंप दूंगा। साथ साथ में भरत महाराज का विवाह मांडवी से होना था और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से होना था, जो कि कुशध्वज महाराज की कन्याएं थीं। तो फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। दशरथ महाराज वहां अपने चार पुत्रों को लेकर अगले दिन सुबह तैयार हुए। अनुमति चाहते थे अंदर प्रवेश करने के लिए। जनक महाराज ने इस बात को सुनी, कहने लगे, दशरथ महाराज को अपने घर में प्रवेश करने की क्या अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, मेरा राज तो उन्हीं का राज है। बड़े प्रसन्नता से दशरथ महाराज वहां पर आए। वशिष्ठ मुनि ने सारे विवाह की तैयारियां की और मंत्रों का उच्चारण आदि करके जनक महाराज के द्वारा उन्होंने चारों कन्याओं के हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में सौंप दिए। श्रीमती सीता देवी का हाथ श्री रामचंद्र के हाथ में करकमलों में, उर्मिला के हाथ श्री लक्ष्मण देवी के हाथ में, लक्ष्मण जी के हाथ में, मांडवी के हाथ भरत के हाथ में, और श्रुत कीर्ति के हाथ शत्रुघ्न के हाथ में। और इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। देवगण भी बहुत प्रसन्न हुए, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे। वैसे जनक महाराज ने खूब दहेज दिया। अब दहेज की बात आती है शास्त्रों में अक्सर, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, परंतु हमें समझना चाहिए कि दहेज कैसे और क्यों दिया जाता था। क्योंकि पुत्री घर से चले जाने वाली है, पिता अपने पुत्री के प्रति स्नेह के कारण कुछ साथ में भेज देते थे, ताकि आने वाला जीवन उसका सुखमय रहे, कोई कष्ट नहीं हो। परंतु ये जबरदस्ती नहीं था, यथाशक्ति प्रसन्न चित्त से वो दिया जाता था। ऐसे नहीं कि आगे चल के भी, जैसे आजकल कभी कभी सुना जाता है, हम पढ़ते हैं कभी कभी कि किसी ने जबरदस्ती कर ली, हमें स्कूटर नहीं दिया दहेज में तो समस्याएं हो गई, ऐसे सब नहीं। तो जनक महाराज ने जो दहेज दिया उसके बारे में सुनेंगे तो हम चकाचौंध हो जाएंगे, इसलिए हम वर्णन नहीं करेंगे। फिर आशाएं लोगों की बढ़ जाती है ना। तो खैर, बहुत दहेज दिए, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से दिया जनक महाराज ने। और वैसे देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न थे, सारी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। इस तरह के विवाहों के बारे में ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को सुनने में कोई समस्या नहीं है, बल्कि हृदय का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि भगवान ही विवाह कर रहे हैं। साधारण विवाह में तो सन्यासी ब्रह्मचारियों को नहीं जाना चाहिए, नहीं कोई कथाएं ऐसे सुननी चाहिए, परंतु भगवान के विवाह के बारे में सुनने से बड़ा दिव्य आनंद मिलता है और हृदय का शुद्धिकरण भी होता है। वैसे पहले दिन हम चर्चा कर भी चुके थे कि सीता राम का विवाह हुआ तो सही, परंतु उनकी जोड़ी, युगल जोड़ी है, वो तो शाश्वत है। केवल यहां ये लीला कर रहे हैं भगवान, इसलिए ऐसे हमें प्रतीत होता है कि पहले सीता देवी और श्री रामचंद्र अलग थे, अनेक वर्षों के बाद मिले, स्वयंवर हुआ, कोई प्रतियोगिता हुई, स्पर्धा हुई, फिर विवाह हुआ। ये तो भगवान की योजना है, बल्कि उनकी लीला मात्र है, ऐसे हमें समझ लेना चाहिए। सीता देवी भी बहुत प्रसन्न हुई कि उनको श्री रामचंद्र का संग प्राप्त हुआ, एक आदर्श जोड़ी थी सीता राम की। जब भी आदर्श गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो सीता राम, इनका नाम सर्वप्रथम मन में आता है कि पति को कैसे होना चाहिए, पत्नी को कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के कर्तव्य को कैसे संभालना चाहिए। ऐसे सीताराम आदि का विवाह समाप्त हो गया। उधर विश्वामित्र मुनि हिमालय वापस चले गए, दशरथ महाराज भी अपने पुत्रों के साथ और उनके पुत्रों के पत्नियों के साथ चल पड़े अयोध्या की ओर। जैसे ही वो आगे निकले तो दशरथ महाराज ने देखा कि तरह तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उधर आसमान में उनके ऊपर से पंछियां उड़ रहे हैं, चीख रही हैं पंछियां, और ऐसे भयानक आवाज निकाल रही हैं। तो उन्होंने जान लिया कि ये तो कोई शुभ लक्षण नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने देखा कि हिरण, गाय आदि जो हैं, उनके बाएं ओर से आके दाहिने ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि मुनिवर, इन लक्षणों का क्या अर्थ है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऊपर इस तरह से पंछियां चीख रही हैं, यह अशुभ लक्षण है, कुछ अशुभ होने वाला है। परंतु जब हिरण आदि आपकी बाएं ओर से आके दाहिने ओर जा रहे हैं तो ये एक शुभ लक्षण है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, कोई संकट की बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। तो दशरथ महाराज का मन शांत हो गया, आगे चलते गए। रास्ते में जैसे ही वो चल रहे थे तो अचानक एक तूफान के जैसा वातावरण निर्माण हो गया, भयंकर वातावरण हो गया, भयानक था, बहुत जोर से हवा बहने लगा, साथ साथ में धूल उड़ रही थी सब जगह, कोई कुछ देख नहीं पा रहे थे। इतना तेज था ये तूफान कि पेड़ भी गिर पड़ रहे थे वहां पर। सभी लोग घबरा गए सिवाय चार भाई, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, दशरथ महाराज स्वयं और वशिष्ठ मुनि और जो अन्य ऋषि थे। उनके अलावा जितने भी लोग थे वो बहुत भयभीत हो गए। और अचानक अंधकार के बीच में से एक व्यक्ति आए, दिखने में वो भी भयानक लग रहे थे, तुरंत सब ने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो परशुराम जी हैं। परशुराम जी भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, उनके लीला अवतार हैं, युग अवतार हैं, मन्वंतर अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं। वैसे ही उनके ये शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं, जिनने अपनी शक्ति का आवेश कराते हैं, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे नारद जी को भक्ति की शक्ति प्रदान की गई है, चतुष्कुमारों को ज्ञान की शक्ति प्रदान की गई, पृथु महाराज को प्रजा पालन की शक्ति प्रदान की गई, उसी प्रकार परशुराम को दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की गई। क्योंकि क्षत्रिय दुष्ट हो गए थे एक बार, और सहस्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या की थी, परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे। यद्यपि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रिय के कार्य को स्वीकार किया और 21 बार समस्त विश्व के जितने भी क्षत्रिय थे उनकी हत्या कर दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में समझाते हैं कि परशुराम के डर से सारे भारतवर्ष के क्षत्रिय इतर तितर हो गए, बिखर गए सारे पृथ्वी में, और जब अलग अलग जगह चले गए तो फिर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति बदलती गई, परंतु मूल भाषा तो संस्कृत थी, मूल संस्कृति वैदिक सभ्यता के अनुसार थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया भाषा बदलती गई, संस्कृति बिगड़ती गई, और इसलिए आज लोग नहीं जानते हैं कि मूल सभ्यता वैदिक सभ्यता थी पहले। ऐसे बहुत प्रमाण सब जगह है। पिछले साल हम पढ़ रहे थे, समाचार पत्र में खबर आई थी कि रूस देश में एक 7000 वर्ष पुराना विष्णु मूर्ति लोगों ने प्राप्त किया था, वैज्ञानिकों ने। अब 7000 वर्ष पहले रूस में, जो कि बहुत उत्तर भाग में है, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति आई कैसे? ऐसे अनेक चीजें हैं सारे पृथ्वी भर में। तो खैर, परशुराम के डर से सब लोग इधर उधर चले गए थे, तो परशुराम ने क्षत्रियों की हत्या करने के बाद प्रायश्चित करना चाहा। उस समय कश्यप मुनि वहां पर आए, उन्होंने यज्ञ आदि संपन्न किए, प्रायश्चित के अनुष्ठान समाप्त हो गए। उन्होंने कश्यप मुनि को सारे पृथ्वी का राज सौंप दिया और फिर वो महेंद्र पर्वत में चले गए। उन्होंने व्रत लिया कि मैं कभी अब अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो उन्होंने ऐसा व्रत तो लिया था, लेकिन अब परशुराम का स्वरूप देखकर सारे ऋषि मुनि चिंतित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि परशुराम जी ने तो अहिंसा का व्रत लिया था, उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं कभी अस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो अब हम देख रहे हैं कि उनके दाहिने कंधे पर परशु है, जिनके पीछे उनका नाम रहा परशुराम। वैसे उनका नाम है राम, तीन प्रमुख राम हैं वैदिक साहित्य में। एक है अयोध्या वाले श्री राम, दूसरे हैं परशुराम, क्योंकि उनका मुख्य अस्त्र था परशु, और तीसरे हैं बलराम जी स्वयं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनको भी राम कहके संबोधित किया गया है श्रीमद् भागवत में। तो खैर, परशुराम जी के कंधों पे उन्होंने परशु देखा, दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर धनुष था, हाथ में एक तीर थी। उनका स्वरूप बड़ा क्रोधित लग रहा था, आंखें लाल लाल थीं और एक पहाड़ के समान आके वहां खड़े थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा सब रुक गए, तूफान चल रहा था। परशुराम ने राम की ओर देखकर कहा कि हमने सुना है कि आपने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और ये वाकई बहुत अद्भुत कार्य है, परंतु शिव जी के धनुष के अतिरिक्त एक दूसरा भी धनुष है और वो है विष्णु का धनुष जो मेरे पास है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। मैं तुम्हारी शक्ति को तब स्वीकार करूंगा जबकि तुम इस धनुष को लोगे, इसके तीर को बांध दोगे और तीर को खींचोगे, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो, फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। दशरथ महाराज ने जैसे ही ये बातें सुन ली कांपने लगे डर के मारे। वैसे क्षत्रिय तो शूरवीर होते हैं, दशरथ महाराज भी शूरवीरता में कोई कम नहीं थे, परंतु उनका स्नेह अपने पुत्र श्री राम के प्रति इतना तीव्र था कि वो सहन नहीं कर पाए इस विचार को कि परशुराम जैसे परम योद्धा का सामना यदि श्री राम करेंगे, भले राम भी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धोखा बहुत है, बहुत खतरा है, कहीं मेरे पुत्र राम को हानि न पहुंच जाए। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की परशुराम जी से कि हे मुनिवर, आपने तो व्रत लिया था अहिंसा का, आपने व्रत लिया था कि आप महेंद्र पर्वत में स्थित होके तपस्या करेंगे और कभी भी अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं। आप ऐसे भयंकर स्वरूप में हमारे सामने आए हैं, कृपया शांत हो जाइए। लेकिन परशुराम ने दशरथ महाराज की ओर देखा भी नहीं और आगे श्री राम की ओर देखकर कहने लगे, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें हे राम कि इस दूसरे धनुष के पीछे इतिहास क्या है। वैसे विश्वकर्म ने ये दोनों धनुष बनाए थे और देवताओं ने फिर शिव जी को एक धनुष दिया और शिव जी ने उस धनुष का प्रयोग किया त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, और दूसरा धनुष विष्णु के पास था। एक बार भगवान की लीला हुई, देवतागण जानना चाहते थे कि विष्णु और शिव जी में श्रेष्ठ कौन है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी युक्ति सूझी कि दोनों विष्णु और शिव जी के बीच में उन्होंने को युद्ध करवाया किसी कारण से। भगवान विष्णु ने अपने धनुष से, अपने तीर से शिव जी के धनुष के तार को काट दिया और अपने हुंकार मात्र से शिव जी को बिल्कुल स्तंभित कर दिया। शिव जी ने देवताओं की घोषणा सुनी कि विष्णु श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने अपना धनुष इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले राजा देवरात को दिया, जो कि महाराज निमि के वंशज थे वास्तव में। तो देवरात ने अपने राज्य में इस धनुष को अच्छी तरह से रखा और मिथिला नरेश जनक महाराज के हाथों तक आज पहुंची और उस धनुष को तुमने तोड़ दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धनुष जो है वो ऋचिक मुनि को प्रदान किया, ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। जमदग्नि मेरे पिता हैं, मेरे पिता थे, इसलिए धनुष अब मेरे हाथों में आया। मेरे पिता जमदग्नि ने वचन लिया था कि वो कभी अपनी रक्षा नहीं करेंगे, यदि कोई उनके प्रति आक्रमण करे, प्रहार करे, तो कभी वो प्रतिकार नहीं करेंगे, अपनी रक्षा के लिए कभी हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए उन्होंने तो प्रयोग नहीं किया इस धनुष का, लेकिन जब कार्तवीर अर्जुन सहस्रार्जुन ने मेरे पिता की हत्या की, जब मैंने देखा कि सारे क्षत्रिय इतने दुष्ट हो चुके हैं पृथ्वी में, फिर मैंने क्षत्रिय के कार्यों को स्वीकार किया। इसी धनुष से और इसी परशु से मैंने 21 बार क्षत्रियों की हत्या कर दी। तो अब यदि तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो तो तुम इस विष्णु के धनुष को हाथ में ले लो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी शक्ति है। उधर सारे ऋषि मुनिगण और विशेष करके महाराज दशरथ बहुत चिंतित हो गए थे, और श्री राम ने बड़े आसानी से अपने हाथ को आगे बढ़ाया, आसानी से उन्होंने उस धनुष को छीन लिया परशुराम के हाथों से, उतनी ही आसानी से तार जोड़ दिया धनुष में, उतनी ही आसानी से तार को खींचा और अंत तक खींच लिया। और जब खींच के तार लगा के खड़े रहे तो परशुराम निरुत्तर रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बड़ी बड़ी आंखों से श्री राम की ओर देखने लगे। और श्री राम ने कहा कि हे परशुराम जी, अब बताइए मैं कहां तीर छोड़ूं, वैसे आप एक ऋषि हैं, आप विश्वामित्र मुनि के रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा, परंतु अब मैंने जो तार को मैंने खींच लिया है, तीर है अभी धनुष पर, छोड़ना तो होगा मुझे, तो मैं कहां छोड़ू इसे। जब श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर पहुंचे थे, जब वनवास में गए, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, श्री रामचंद्र अनेक दिनों तक वहां प्रतीक्षा करते रहे, फिर भी जब समुद्र उनके सामने आए नहीं तो श्री राम को बहुत क्रोध आया, उन्होंने अपने धनुष बाण को उठाया और तीर छोड़ के समुद्र के जल को इतना उत्तेजित कर दिया कि जलचर प्राणी जितने भी थे वो त्राही त्राही मचाकर बहुत चिंतित सब लोग ऊपर आए, इधर उधर उथल पुथल हो गया सारे समुद्र में। तब जाकर समुद्र देव आए, उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र ने अपने ब्रह्मास्त्र की तीर को खींच के रखा है, क्षमा याचना की। श्री रामचंद्र का ना ठीक है, भगवान राम का एक गुण यह है कि शरणागतों को वो शरण देते हैं, जब भी कोई श्री राम के शरण में आते हैं उनको नकारते नहीं हैं, ये भगवान श्री राम का गुण है। तो भगवान ने समुद्र देव को क्षमा कर दिया और उस समय उन्होंने कहा कि तीर तो मैंने खींच ली है, कहीं तो छोड़ना है, बताओ मैं कहां छोड़ूं। तो समुद्र देव ने कहा एक वहां स्थान है समुद्र के पास में जहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, वो मेरे समुद्र का जल पीते हैं, इसलिए मेरा जल अपवित्र हो चुका है, वहां आप उस तीर को छोड़ दीजिए। तो श्री राम ने ऐसे ही किया, वो तीर वहां पहुंच गई और भगवान ने वरदान भी दिया कि ठीक है, क्योंकि ये तीर मैंने यहां छोड़ा है, मैं वरदान देता हूं कि इस प्रांत में हरियाली होगी, गाय बहुत होंगे, अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां आदि यहां पे उगेंगी। तो एक बार जब ऐसे अस्त्रों के लिए धनुष खींचा जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है कहीं पर, तो श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि अब मैं कहां छोड़ूं, ठीक है आपको तो हत्या में नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस तीर को छोड़ के आपके स्वर्ग प्राप्ति का अधिकार छीन लूंगा। तो परशुराम केवल सर झुका के वहां खड़े रहे, वो जान गए कि ये तो स्वयं मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहे कि जैसे आपकी इच्छा है प्रभु, अब मैं जान गया कि आप कौन हैं और मुझे कोई संकोच या दुख नहीं हो रहा है आपके सामने हार के, बल्कि मेरा मन बहुत प्रसन्न हो चुका है कि आपके सामने मैं हार गया हूं। वैसे जब कश्यप मुनि ने यज्ञ आदि संपन्न किए थे और मैं महेंद्र पर्वत में चले गया था, कश्यप मुनि ने मुझे आदेश दिया था कि कभी मुझे यहां रहना नहीं चाहिए, इसलिए रात होने के पहले, सूर्यास्त होने के पहले मैं पुनः महेंद्र पर्वत में लौट के जाना चाहता हूं, तो मुझे आप अनुमति दीजिए। मैंने तपस्या करके बहुत बल प्राप्त कर लिया था, लेकिन आपने उस तपस्या के बल को या तपस्या के जो फल को छीन लिया है इस एक तीर के कारण, और ये आपका अधिकार है, आपकी कृपा है मुझ पर, तो मुझे अनुमति दें, मैं तुरंत अब महेंद्र पर्वत की ओर जाना चाहता हूं। तो श्री रामचंद्र ने अपनी वो तीर छोड़ दी, परशुराम ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ लिए और वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। तो इसके बाद दशरथ महाराज अपने पुत्रों को साथ में लेकर आगे अयोध्या की ओर चल पड़े। वहां पे अयोध्या की प्रजा राह देख रही थी। खबर तो उनको मिल गया था कि ऐसे विवाह हो गया था और बहुत धूमधाम से सबका स्वागत हुआ, श्री राम और उनके भाइयों का। बहुत खुशियां अयोध्या के लोग मना रहे थे। और आने के बाद वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि श्री राम और सीता का जीवन कितना आदर्श था। दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगे, ऐसे समय बीतता गया। और इस वर्णन के साथ में वाल्मीकि मुनि बाल कांड की समाप्ति करते हैं और अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड के शुरुआत में ही वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र के गुणों का पुनः विस्तार में वर्णन करते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी अनेकों बार वाल्मीकि मुनि ऐसे वर्णन कर चुके हैं, विशेषतः बाल कांड की शुरुआत में ही वाल्मीकि मुनि के उत्तर में नारद जी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं श्री रामचंद्र की। उसके बाद में ब्रह्मा जी करते हैं, उसी प्रकार अब वाल्मीकि मुनि यहां उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। दशरथ महाराज के वो प्रिय पुत्र थे, यद्यपि चार पुत्र थे उनके, परंतु उनमें से श्री राम सबसे प्रिय थे दशरथ महाराज को, क्योंकि श्री रामचंद्र के गुण ही ऐसे थे। न केवल दशरथ महाराज, परंतु अयोध्या का प्रत्येक निवासी, महल में रहने वाले और प्रजा के सदस्य भी श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे प्रजा का प्रेम राजा के प्रति कलयुग में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि आजकल के युग में देखा जाता है कि प्रजा हैरान हो जाती है, नेताओं से निंदा करती है प्रजा, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, प्रजा राजाओं में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु श्री राम के प्रति कितना प्रेम, कितना विश्वास प्रजा के मन में था, क्योंकि श्री रामचंद्र सद्गुणों से संपन्न थे, दिव्य गुणों से युक्त थे, दिखने में भी प्रिय दर्शन थे, बहुत सुंदर थे। उनको देखने मात्र से सबका चित्त बड़ा प्रसन्न हो उठता था। बहुत ही शूरवीर थे, आत्मसंयमी थे, आत्मसंतुष्ट सदैव रहा करते थे, लोभ से सदैव मुक्त रहा करते थे, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते थे। यद्यपि वो इतने शूरवीर थे, परंतु घमंडी नहीं थे, सदैव अपने व्यवहार में सौम्य थे। उनकी बोली भी बहुत मधुर हुआ करती थी, इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो मृदुभाषी थे, जोर जोर से बात नहीं करते थे, मधुरा भाषी थे। मधुरा भाषी मतलब उनके वचन भी ऐसे ही मधुर हुआ करते थे। और आगे वाल्मीकि जी बताते हैं पूर्वाभाषी भी वो थे। पूर्वाभाषी का मतलब है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एक सम्मान है, हम सर्वप्रथम उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, स्वागत है आपका। यदि हम पहले बात नहीं करते हैं, हम रुक जाते हैं कि सामने वाला पहले कहें, हम क्यों कहें, तो ये भी एक घमंड की बात है। अक्सर ऐसे होता है जब दो लोगों के बीच में कोई गलत फहमी हो जाती है, उनका संबंध बिगड़ जाता है, तो एक दूसरे के सामने आके भी बातचीत नहीं करते हैं। तीसरा आदमी कोई कहता है बात तो कर लो ना, कहेंगे ना उसे पहले करने दो, ऐसे होता है। लेकिन श्री रामचंद्र ऐसे लघु चेतना के नहीं थे, जैसे ही किसी से मिलते थे पहले जाके बात किया करते थे और उनके स्वर हमेशा हल्के हुआ करते थे, मृदुभाषी। भारत में हम समस्या देखते हैं कि लोग बहुत जोर जोर से बात करते हैं। आप रेलगाड़ी में जाइए, बस में जाइए, सड़कों में जाइए, जहां भी आप जाइए बहुत जोर जोर से बात करते हैं। सोचते नहीं हैं कि जो आसपास में बैठे हैं उनको कोई कठिनाई हो रही होगी। रेलगाड़ियों में जाइए तो बस रात रात तक इतने जोर जोर से बात करते हैं। एक बार हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे तो कोई महिलाएं हमारे सामने थीं, उनके सारे परिवार का इतिहास, उनके घर में जो भी राजनीति चलती थी उनके सारी चीजें हमको पता चलती, किसने क्या बहू के साथ, सास का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम वास्तव में मन में प्रशंसा करने लगे कि इनकी शक्ति कितनी है कि 6 घंटे लगातार बोले जा रहे हैं, तूफान की तरह कोई रुकावट नहीं उनकी बोली में। ये तो विशेष शक्ति भगवान ने प्रदान की उनको कि बस ऐसे बोलने, 2 घंटे प्रवचन देते हैं थोड़ा बहुत थक जाते हैं, ये 6 घंटे बात किए जा रहे थे जोर जोर से। अंत में उन्हें कहना पड़ा हाथ जोड़ के कि 5 मिनट के लिए जय शांतन हो, 5 मिनट केवल। तो भगवान श्री रामचंद्र का व्यवहार आदर्श था। हर गुण से हम सीख सकते हैं। और साथ साथ वाल्मीकि मुनि ये भी कहते हैं, प्रियं वदः, उनसे आसानी से कोई जाके बात कर सकता था। साथ साथ में स्मित पूर्वाभिभाषी, हमेशा हसमुख रहा करते थे। और जब क्रोध का समय आता था तो ऐसे लोगों के साथ जो दुष्ट थे तब पीछे नहीं हटते थे, हिचकिचाते नहीं थे। साथ साथ में जो सज्जन थे उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। दुष्टों का दमन करने के लिए आतुर रहते थे और उनसे उनके जो शरण में आते थे उनको शरण देने के लिए भी आतुर रहते थे। सदैव क्षमा दया की भावना उनके मन में रहती थी। साथ साथ में नम्र हुआ करते थे। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, कोई खास गुण नहीं होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति नम्र रहे, आजकल वो भी नहीं होते हैं लोग, वो दूसरी बात है। यदि वो नम्र रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हो, उसके पास बहुत कुछ हो, अनेक गुण हो, अनेक लक्षण हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, धनी हो, प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठित हो, और फिर भी वो नम्र है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। श्री राम का चरित्र ऐसे था। जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो गुणवान थे, साथ साथ में सत्यवादी थे, सदैव ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों का आदर करते थे, शास्त्रज्ञ थे, धर्मज्ञ थे। और इस तरह से वाल्मीकि मुनि आगे कहते रहते थे। साथ साथ वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि कैसे पैसों को खर्च करना है वो भी जानते थे। आजकल की समस्या क्या है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया। परंतु श्री रामचंद्र शास्त्रों के कथन को जानते थे। जैसे नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि आपके खर्चे कैसे हो रहे हैं, महाभारत में यह वर्णन आता है, आपकी जो आमदनी है उसका 1/4 भाग या आधा भाग आप खर्च कर रहे हैं या 3/4 भाग, इससे अधिक नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वो राज्य चला रहा हो या चाहे अपने घर को चला रहा हो, अपने आमदनी के हिसाब से खर्चा भी होना चाहिए। और आगे चल के श्री रामचंद्र ने भरत महाराज को भी राजनीति के बारे में कई अच्छे उपदेश दिए। तो खैर, श्री रामचंद्र के ऐसे अनंत गुणों का वर्णन करने में वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे कि मैं सक्षम नहीं हूं। तो 60-65 ऐसे गुणों का उल्लेख करके फिर वाल्मीकि मुनि आगे कथा बढ़ाते हैं। उधर अयोध्या में दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न थे कि अब मेरे चारों पुत्र विवाहित हो गए, परंतु थोड़े बहुत चिंतित भी थे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। दशरथ महाराज की आयु इस समय 60,000 वर्ष की थी, कोई कम नहीं। सत्ययुग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, कभी कभी 1,00,000 वर्ष भी। और जैसे जैसे आयु या युग बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आयु का घटन होते रहता है। और जब कलयुग आता है तो लोगों की जीवन की अवधि बहुत कम हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलौवस्मिन् युगे जनाः मंदामन सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। कलयुग में लोगों की आयु प्राय अल्प होगी, अल्पायुषः, साथ साथ मंद बुद्धि के होंगे, गलत लोगों के संग में पड़ेंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, आलसी रहेंगे, सदैव विचलित रहेंगे। ऐसे कलयुग के लोगों के लक्षण हैं। परंतु उस समय दशरथ महाराज 60,000 वर्षों के होने पर अपने आप को बूढ़े मान रहे थे। आजकल व्यक्ति 50-60 साल को हो जाता है तो अपने आप को बूढ़ा मानने लगता है। दशरथ महाराज सोचने लगे कि अब मैं थक गया हूं, मुझे अब पुनर्जन्म की तैयारी करनी चाहिए, अब मुझे श्री राम को युवराज कह के घोषित करना चाहिए। तो जैसे ही मन में विचार आया दशरथ महाराज का, तो उन्होंने कई सारे अशुभ लक्षण देखे सब जगह। उनके मन में कोई सपने भी ऐसे भयानक आए तो काफी भयभीत होकर उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, साथ साथ में अयोध्या के जो प्रधान और प्रसिद्ध नागरिक थे, वैश्य आदि थे, उनको भी बुलाया। और उनके अधीन जो अन्य राजा थे, जो अन्य प्रांतों के राजा थे, दशरथ महाराज तो विश्व सम्राट थे, उनके अधीन ऐसे अनेक राजा थे जो पृथ्वी के अनेक भागों को संभालते थे, तो वो सब भी आए। और उन सब के सामने दशरथ महाराज ने अपने हृदय की बातें व्यक्त कर दी और कहा कि मेरे मन में इच्छा है कि श्री राम, जो कि अब 27 वर्ष के हो चुके हैं, मैं उनको युवराज का पद प्रदान कर दूं और शीघ्रातिशीघ्र मैं इस अनुष्ठान को संपन्न करना चाहता हूं। मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं, क्या मेरा प्रस्ताव योग्य है, उचित है? तो तुरंत सारे उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सहमति अपनी प्रदान कर दी, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे श्री राम के और दशरथ महाराज के कि आपका निर्णय बड़ा उपयुक्त है, अवश्य श्री राम को युवराज कहके घोषित शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। देखिए, आजकल राजतंत्र को कोई नहीं मानते हैं। राजतंत्र जितने भी बचे हुए थे उनको भी लोग विद्रोह आदि के कारण, क्रांति के माध्यम से खत्म करते जा रहे हैं। अब प्रजातंत्र का समय है, परंतु प्रजातंत्र में क्या होता है, जो सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं वही शक्तिशाली बन जाते हैं, उन्हीं का राज्य चलता है। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये प्रजातंत्र, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ये वास्तव में डेमन क्रेजी है। डेमन अर्थात असुर, क्रेजी अर्थात पागल। तो प्रजातंत्र में हम देखते हैं कि यही हो रहा है। समाचार पत्र खोल के देखिए, नहीं देखें भी तो कोई बात नहीं, परंतु अब देखिए कि क्या दशा है सारे समाज की। जगह जगह दुष्ट लोग केवल राज करते हैं जगह जगह पर, कोई मूल्य कोई उसूल ठीक नहीं है, धर्म परायणता नहीं है, और केवल चुनाव के लिए केवल वोटों के लिए लोग क्या नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। कहां गए राम जैसे नेता और राजा? तो राजतंत्र में भी ऐसा नहीं है कि राजा जो मनमाने कोई करता था वो अवश्य अपने गुरुजनों से सलाह लिया करता था, जैसे दशरथ महाराज ने लिया। शास्त्रों के आधार पर वो निर्णय लिया करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर कोई योग्य निर्णय लेते थे। तो दशरथ महाराज ने इन सब से विचार विमर्श करने के बाद बड़े प्रसन्नता से घोषणा की कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, कल ही कर देंगे, क्योंकि अब शुभ घड़ी आ रही है, चंद्र जो है वो अब सही जगह में पुनर्वसु नक्षत्र से आगे बढ़ के अब आ रहा है अच्छे नक्षत्र में, तो तुरंत हमें अभी तैयारियां करनी चाहिए। परंतु आप सब बताइए कि मेरे होते हुए आप क्यों चाहते हैं कि श्री राम युवराज बने? वैसे दशरथ महाराज श्री राम का गुणगान सुनना चाहते थे इनके मुख से। तो सारे नागरिक एक के बाद एक श्री राम का गुणगान करने लगे, और दशरथ महाराज को ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो उनके कानों में अमृत की धारा बह रही है। और दशरथ महाराज सुनते रहे बहुत प्रसन्न चित्त से। जब सभा समाप्त हुई, अपने अंतःपुर में गए, बड़े प्रसन्न चित्त से अपने उन्होंने बुलवाया कि चलो आप बुला लो श्री राम को। श्री राम को बुलवाया, श्री राम से कहने लगे कि हे पुत्र, अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयारी करो, मैं तुम्हें युवराज नियुक्त करना चाहता हूं। और उन्होंने उस समय श्री राम को कई अच्छे उपदेश दिए कि कैसे एक राजा को बनना चाहिए, कैसे आदर्श व्यक्ति को बनना चाहिए। और वशिष्ठ मुनि को उन्होंने आदेश दिया कि तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि कल ही हमें अनुष्ठान मनाना है। श्री राम को ऐसे उपदेश देने के बाद प्रसन्न चित्त से राम चले गए वापस। परंतु उस समय अनेक लोग थे राजमहल में जिन्होंने ये संवाद यह वार्तालाप सुन लिया, बड़े खुश होकर सीधे कौशल्य देवी के पास चले गए और उनको खबर दे दी कि दशरथ महाराज कल ही श्री रामचंद्र को युवराज के पद में नियुक्त करना चाहते हैं, कल बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। कौशल्य देवी बहुत प्रसन्न हुई, बहुमूल्य रत्नों को उन्होंने उपहार के रूप में उनको दे दिया जिन्होंने खबर पहुंचाई उनको। उस समय राम भी आए वापस, देखा कि माता कौशल्या नारायण भगवान की श्री विग्रह की सेवा कर रही हैं, अपनी माता को खबर पहुंचाई। माता कौशल्या की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, भाव विभोर हो गई। और उधर लक्ष्मण भी खड़े थे, तो लक्ष्मण की ओर देख के श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं अकेला राज्य नहीं करूंगा, तुम सदैव मेरे साथ में रहोगे और मेरे साथ में राज्य करोगे, तुमसे अलग मैं नहीं रह सकता, न मैं राज्य संभाल सकता हूं। उधर दशरथ महाराज थके हुए थे, अपने कमरों में फिर से गए थे वापस विश्राम करने के लिए। तब दोबारा उनको कोई बुरे सपने आए, अशुभ लक्षण देखने लगे, बहुत चिंतित हो गए। तुरंत सुमंत्र से कहा, उनके जो प्रधानमंत्री थे, इसी क्षण श्री राम को बुला के ले आओ। श्री राम थोड़े चिंतित हो गए, क्या बात है, अभी अभी तो थोड़े समय पहले चर्चा हुई थी, अब क्या हुआ कि मेरे पिता मुझे अब बुला रहे हैं। तो श्री राम वापस चले आए। दशरथ महाराज ने पुनः कहा, मैं बहुत घबराया हुआ हूं, सब जगह अशुभ लक्षण मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कुछ हो जाए मैं जल्दी इस अनुष्ठान को संपन्न करना चाहता हूं। यद्यपि भरत और शत्रुघ्न इस समय नहीं हैं, वो केकई देश में गए हैं, उनके मामा युधाजित उनको लेकर गए हैं, परंतु मैं रुकना नहीं चाहता, इसीलिए शीघ्र अति शीघ्र इस अनुष्ठान को करना है, तुम जल्दी जाओ तैयारी करो। तो राम चले गए वहां से। वैसे दशरथ महाराज ने इतनी जल्दी क्यों की, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण ये था कि वो घबरा गए थे, अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, सोचा कि कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, इसलिए इसके पहले कि मेरे प्राण छूट जाएं, मैं इस अंतिम मेरे इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि उनको याद आया कि जब कैकेयी के साथ विवाह होना था, तो उन्होंने कैकेयी के पिता राजा केकय, जिनका नाम था अश्वपति, उनको वचन दिया था, क्योंकि अश्वपति महाराज ने ऐसे ही चाहा था कि कैकेयी से उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले पुत्र ही आगे चल के आपके राजगद्दी पर बैठेंगे, वही विश्व सम्राट होंगे। उस समय राजा दशरथ ने हां कह दिया था। अब उनके मन में ये विचार आया, याद आ गई ये बात कि अरे अब भरत यदि आए वापस और भरत के मन में इच्छा हो कि मैं राजा बनना चाहता हूं, आपने वचन दिया था, तो फिर क्या होगा। दशरथ महाराज सोचने लगे, नहीं नहीं, भरत ऐसे नहीं कर सकता, भरत तो श्री राम से बहुत प्रेम करता है और बहुत ही आज्ञाकारी है श्री राम के प्रति, राम की हर बात को मानता है, राम के होते हुए राम तो वरिष्ठ पुत्र है, तो भरत कभी भी राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी दोबारा मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ये जो ऊंचे पद ऐश्वर्य आदि की बातें हैं, ये धीर से धीर पुरुष के मन को भी डावाडोल कर देती हैं, तो न जाने भरत का मन यदि ऐसे कुछ हो जाए, विचलित हो जाए, तो क्या हो सकता है, भरत का जो प्रेम डगमगा जाए तो क्या होगा। इसलिए जल्दी ही भरत के आने के पहले इस अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए। वैसे आचार्यों ने टीका यह भी की है कि दशरथ महाराज के मन में ऐसे विचार आए और ऐसे अशुभ लक्षण, तथा कथित अशुभ लक्षण उनको दिखाई पड़े, इसलिए कि वो श्री राम के कार्य को संपन्न करना चाहते थे। जिस उद्देश्य से श्री राम प्रकट हुए थे वो पूर्ण होना था। यदि जनक महाराज और कैकेयी और केकय राजा यहां आते, उनको यदि निमंत्रण दिया जाता, तो अवश्य उनके दामाद जनक महाराज, दामाद शत्रुघ्न, भरत आदि यहां चले आते, और भरत महाराज जब यहां पर आते तो उनके सामने यदि राम युवराज नियुक्त किए जाते, तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, फिर वनवास का क्या प्रश्न था, फिर रावण का वध कैसे होता। तो देवताओं ने ऐसी एक योजना कर दी कि अशुभ लक्षण आने लगे। दशरथ महाराज के मन में इतनी चिंता हुई और फिर उन्होंने अगले दिन ही अनुष्ठान संपन्न करना चाहा। तो फिर राम वापस चले गए अपने कमरों में। उधर तैयारियां सारे अयोध्या नगरी में, बल्कि सारे कौशल प्रांत में हो रही थी। बड़े आनंद से सारी प्रजा खुशियां मना रहे, सब तैयारियां कर रहे थे। वैसे जैसे ही खबर कौशल्या तक पहुंची थी, प्रजा भर में खबर फैल गई। हालांकि उस समय कोई टीवी नहीं था, ना कोई मोबाइल फोन थे, लेकिन खबर बहुत जल्दी फैल गई। उधर सुमंत्र को फिर से भेजा दशरथ महाराज ने बहुत बेचैन हो गए थे, इसलिए उन्होंने सुमंत्र से कहा कि जाओ देखो श्री राम ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना श्री राम को। तो सुमंत्र चले गए और श्री राम सोचने लगे कि मेरे पिता इतने चिंतित क्यों हैं, क्या बात है। फिर वशिष्ठ मुनि भी आए। वशिष्ठ मुनि जब वापस जा रहे थे तो देख के बहुत विस्मित हो गए कि प्रजा का प्रेम श्री राम के प्रति इतना है और ऐसी तैयारियां चल रही हैं, तोरण फूलों की मालाओं से सारे शहर को लोग सजा रहे हैं और यद्यपि अब रात हो चुकी है फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि दिन है, क्योंकि घर घर में दीप आदि प्रज्वलित हुए हैं, जगह जगह सब गीत गाए जा रहे हैं, लोग मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं और ऐसे लोग इधर उधर व्यस्त हैं तैयारियां करने में, रात भर लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि भी जल्दी अपने स्थान में लौट के आए क्योंकि उनको भी तैयारियां करनी थी। उधर सारे अयोध्या नगरी में तैयारियां देखते हुए सभी लोग प्रसन्न थे, परंतु केवल एक महिला थी जो प्रसन्न नहीं हुई और उनका नाम तो आप सब जानते हैं, उनका नाम था मंथरा। अब मंथरा भी एक अप्सरा थी पहले। आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया था कि जाके आप वानर आदि योनियों में के द्वारा संतान की उत्पत्ति करना और ये आपके समान ही शक्तिशाली बुद्धिमान तेजस्वी आदि होने चाहिए। और उन्होंने अप्सराओं से भी कहा था कि आपको भी जाके जन्म लेना चाहिए। तो उनमें से एक अप्सरा थी मंथरा। वैसे अप्सराएं तो होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, परंतु मंथरा दिखने में सुंदर नहीं थी, कुबड़ा थी। संस्कृत में कुब्जा कहते हैं, मथुरा लीला से आप कुब्जा की कथा तो जानते हैं, वो कुबड़ा थी। और देवतागण चाहते थे कि ऐसे कुछ हो जाए जिससे श्री राम को वनवास में जाना पड़े और आगे चल के फिर वो रावण का वध कर सके। यदि ऐसी कोई घटना न होती, यदि मंथरा आगे चल के ऐसे कार्य न करती कि कैकेयी का मन प्रदूषित न करती, तो फिर रामलीला आगे चल के कैसे होती, हनुमान जी कहां से आते फिर। तो मंथरा एक निमित्त मात्र थी, लेकिन उस भूमिका को निभाते निभाते मंथरा बहुत पूरी तरह से मग्न हो गई थी उस भाव में। तो मंथरा ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, एक दासी से पूछा ये सब क्या हो रहा है, खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं यहां पर। तो जब पता चला कि कल क्या होने वाला है, तुरंत वो कैकेयी के पास चली गई। कैकेयी बड़े आराम से बैठी हुई थी अपनी शैया के ऊपर, प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रही थी। तो सीधे जाके कटु वचन बोलने लगी मंथरा कैकेयी से, अरे मूर्ख तुम यहां बैठी हो बड़े आराम से, तुम्हें पता नहीं क्या दुर्घटना होने जा रही है, उठो उठो। तो कैकेयी आश्चर्यचकित हो गए कि मंथरा ऐसे कटु वचन मेरे साथ बोल रही है, क्या बात है। तो फिर कहने लगी अरे मंथरा बात क्या है, हुआ क्या। तो ऐसे सुनकर मंथरा को और क्रोध आया। मंथरा कहने लगी कि तुम तो बहुत भोली भाली हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तुम्हें तो लगता है कि दशरथ महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम प्रिय रानी हो उनकी, परंतु तुम नहीं जानते तुम्हें और तुम्हारे पुत्र भरत को बहिष्कृत करने के लिए, अपमानित करने के लिए अब षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है दशरथ महाराज कल श्री राम को युवराज के पद में नियुक्त करने वाले हैं और बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, खुशियां लोग मना रहे हैं और तुम भी इतनी मूर्ख हो कि तुम उनके साथ खुशियां मना रहे हो। तुम्हारे लिए कितने दुख का समय है। ऐसी बातें सुन के कई कई को आश्चर्य हुआ कि अरे मंथरा, इसमें दुख की क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छी खबर मुझे सुनाई। ये लो अनमोल रत्न तुम्हें मैं देती हूं, सबसे अनमोल रत्न जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे रही हूं। तो बड़े हसमुख चेहरे से कैकेयी ने सबसे अनमोल रत्न कैकेयी को उपहार दिया, भेंट दिया। कैकेयी ने वो रत्न हाथ में ले लिया, नीचे फेंक दिया। मुझे ऐसे रत्न नहीं चाहिए, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे होश ठिकाने नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कितनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही है। देखो श्री राम अब राजगद्दी पर बैठेगा और तुम्हारे पुत्र का क्या होगा, तब आगे चल के तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अब तुम महारानी हो, परंतु आगे चल के देखो क्या होने वाला है। कैकेयी कहने लगी कि अरे मंथरा, तुम राम के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, राम सद्गुणों से संपन्न है, राम जैसा कोई पुत्र नहीं है, राम अपनी चार माताओं में कभी भेद नहीं करता है, तीन माताओं में भेद नहीं करता है, राम उतना ही मुझे सम्मान करता है, उतना ही मुझसे प्रेम करता है जितना वो अपनी माता कौशल्या से करता है, मैं भी कोई भेद नहीं करती हूं भरत और राम में, और वैसे भी राम इतना लोकप्रिय है, मैं भी बहुत खुश हूं कि अब श्री राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, और वैसे 100 साल राज करने के बाद फिर अवश्य वो भरत को राज गद्दी पर बिठाएंगे। मंथरा कहने लगी, तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, तुम इतनी भोली भाली हो, तुम सोच रही हो कि 100 वर्ष राज करने के बाद श्री राम भरत को राज सौंप देंगे, बिल्कुल नहीं, आगे चल के राम का पुत्र होगा तो राम का पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तो तुरंत तुम्हें कोई कदम उठाना चाहिए। देखो तुम्हें याद है बहुत पहले अनेक वर्ष पूर्व महाराज दशरथ ने तुम्हें कहा था कि वो 2 वरदान देंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने राजा को बचाया था युद्ध में, वो घायल हो गए थे असुरों के विरुद्ध युद्ध करते हुए देवताओं की ओर से, और घायल महाराज दशरथ को तुमने, जो कि रथ के ऊपर सवार थे वो, उनको तुम सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। दशरथ महाराज बहुत कृतज्ञता से, प्रसन्नता से तुमसे कहने लगे कि मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं, मांगो, और तुमने कहा था कि मैं बाद में मांगूंगी हे राजन, अब वो समय आ गया है, तुरंत हे कैकेयी तुम राजा से ये 2 वरदान मांग लेना। पहले वरदान ये मांगना कि तुम्हारा पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे, राम नहीं, और दूसरा वरदान ये मांगना कि श्री राम वनवास में चले जाए, वन में चले जाए 14 वर्षों के लिए, और वल्कल आदि जो वन के वस्त्र होते हैं, ऋषियों के वस्त्र होते हैं, वो धारण करके चले जाए, और इसके बाद तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तुम महारानी बन जाओगी, और कौशल्या सुमित्रा आके तुम्हारी सेवा करेंगी, वो तुम्हारी दासी बन जाएंगी। अब धीरे 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 से जब कैकेयी इन बातों को सुनती जा रही थी, कैकेयी का मन बदलते जा रहा था धीरे धीरे धीरे, और अंत में मंथरा के वचनों से, मंथरा भी बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी, वाक सिद्धि थी मंथरा की, देवताओं ने प्रदान किया हुआ था ना ये शक्ति उनको, तो कैसे किसी के मन को मोड़ लेना, कैसे किसी को मन को दूषित कर लेना, कैसे समझाना बुझाना किसी को अच्छी तरह से जानती थी, तो कैकेयी को पूरी तरह से समझा दिया, कैकेयी का मत पूरी तरह से बदल गया। अब कैकेयी भी सोच लगी, हाँ तुम जो कह रही हो मंथरा बहुत सही है, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम मेरे वास्तव में शुभ चिंतक हो। हालांकि मंथरा बहुत कुरूप थी, लेकिन कैकेयी अब प्राय पागल हो गई थी, अब मन तो बिल्कुल बिगड़ गया था। तो कैकेयी कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो, हालांकि वो नहीं थी। और जब ऐसे हो जाएगा, जब मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तो मैं तुम्हें बहुत सारे आभूषण आदि दूंगी। ऐसे प्रशंसा करते करते कैकेयी का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। देखिए, इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक जो दूसरों को तीसरे व्यक्ति के प्रति भड़काते हैं, दूसरे जो ऐसे बातों को सुनकर भड़क जाते हैं, और तीसरे जो ऐसी बातों को सुनकर भी नहीं भड़कते हैं। तीसरे श्रेणी में लोगों की संख्या बहुत कम है। उनमें से भरत थे तीसरे श्रेणी में। बाद में चल के जब भरत को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। परंतु खैर, इस कलयुग में मुख्य लक्षण क्या है? ये कली शब्द आता है कलह से। कलह का अर्थ है झगड़ा या मतभेद। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा। हम देखते हैं कि आजकल लोगों के बीच में संबंध बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए गलत फहमियां उत्पन्न होती हैं, कभी कभी वो सही भी नहीं होते। बस मन में व्यक्ति सोचते हैं कि शायद इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कहा, ऐसे सोचा, ऐसे किया, तो दोनों का संबंध बिगड़ जाता है। आजकल इस कलयुग में लोगों के बीच में प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना जागृत करना बहुत मुश्किल हो चुका है। श्रद्धा उत्पन्न करना दूसरों के प्रति बहुत मुश्किल है। और इस तरह से जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उनका कार्य बहुत कठिन हो गया है। अधिकारी भी योग्य नहीं रहे, इसलिए अधिकारी व्यक्तियों के प्रति जो एक सम्मान, आदर, प्रेम होना चाहिए, वो भी लोगों के मन में नहीं रहा। हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं, हमारे दैनिक व्यवहार में कितनी बार ऐसे होता है, कोई एक आदमी जाके दूसरे से कहता है, आपको पता है आपके बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो हमें यदि आके कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि आपके बारे में ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? तुरंत बात को काट देनी चाहिए। नहीं, हम नहीं सुनना चाहते, इससे हमारा कोई भला होगा? नहीं होगा। मन विचलित हो जाएगा, अरे इन्होंने हमारे बारे में ऐसे कहा, तो सुनने से क्या लाभ? दूसरा प्रश्न, क्या उनका भला होगा जिन्होंने ऐसे कहा था? नहीं होगा, वो भी अपराध कर बैठेगा। क्या आपका भला होगा जो आप मुझे सुना रहे हो? आपका भी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा है? छोड़ो इन बातों को। तो स्वाभाविक रूप से इस कलयुग में लोगों के मन में ऐसे अन्यों के प्रति गलत बातें आती हैं, और बहुत आसानी से हम झुक जाते हैं इस आदत से। बस मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो हमें भड़काना नहीं चाहिए अवश्य अन्यों को। हमें दो व्यक्तियों के बीच में जब मतभेद हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, तो हमें कैसे उनको जोड़ें, उनके बीच में कैसे प्रेम का संबंध स्थापित करें, ये विचार करना चाहिए। भले शिकायत लेकर कोई हमारे पास आए दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो हमें आग में घी नहीं डालना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कैसे इन दोनों का संबंध पुनः ठीक ठाक हो जाए। उनको समझाना चाहिए कि नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अब ऐसे एक वृत्ति या भाव की आवश्यकता सारी दुनिया में है, नहीं तो ऐसे कलह से एक ऐसे अग्नि उत्पन्न हो रही है सारी दुनिया में, जिसमें संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, गलत फहमियां बिगड़ते जा रही हैं। तो भगवान की लीलाओं के द्वारा हम न केवल ऐसे उपदेश ग्रहण करते हैं जो अनुसरणीय हैं, वो तो है ही, जैसे श्री राम के गुण आदि हैं, भरत के भी, परंतु हमें ऐसे भी उपदेश मिलते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे नहीं होना चाहिए। जो अनुकूल चीजें हैं उनका भी ज्ञान मिलता है और जो प्रतिकूल बातें हैं वो भी हम समझ पाते हैं। तो मंथरे की बातें सुन ली और सुनने के बाद फिर कैकेयी देवी सोचने लगे कि हाँ, ये तो जो बात कही है मंथरा ने बहुत सही है। फिर मंथरा ने आगे कहा, जाओ शोक घर में जाके लेट जाओ। इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई व्यवस्था हुआ करती थी, करता था पूर्व समय में, वैदिक काल में राजाओं के अनेक रानियां हुआ करती थी, तो इतने सारे रानियों को संभालना इतना आसान भी नहीं हुआ करता था। तो कोई एक रानी कोई किसी बात से निराश है तो वो जाके शोक घर में बैठ जाती थी और राजा उनको वहां देख के समझ जाते थे कि इनको कोई समस्या है, तो जाके बात करते थे। तो मंथरा ने अब और भड़काया कैकेयी को कि जाओ वहां शोक घर में एक साधारण वस्त्र पहन के बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, नहीं लेट जाओ, और रोते रहना। जब दशरथ महाराज आएंगे तो उनसे ये दो वरदान मांगना। बार बार टोक टोक के मंथरा कैकेयी को कहने लगी, देखो पिघलना नहीं, अपने विचारों को बदलना नहीं, स्थिर रहना, याद रखना कि तुम्हारे जीवन तुम्हारे पुत्र के जीवन का प्रश्न है, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा अत्याचार होने जा रहा है, उससे अपने आप को बचाओ। तो कैकेयी ने वैसे ही किया। अब कैकेयी मंथरा के हाथ में एक कठपुतली बन गई थी। तो शोक घर में गई, दशरथ महाराज की प्रिय रानी थी वास्तव में। दशरथ महाराज ढूंढते ढूंढते आए, कैकेयी को देखा, अरे शोक घर में, क्या बात है? तो अंततः काफी विस्तार में वाल्मीकि जी इसका वर्णन करते हैं, इस घटना का, जो संवाद कैकेयी और दशरथ महाराज के बीच में हुआ, इसका वर्णन विस्तार में वाल्मीकि जी करते हैं। हम तो केवल संक्षेप में बता रहे हैं। कैकेयी जब लेटी हुई थी, दशरथ महाराज ने जाके सांत्वना देने का प्रयास किया कि कारण क्या है शोक का, बताओ। अंत में कैकेयी कहने लगे कि आपको याद है कि आपने दो वरदान मुझे दिए थे और मैंने कहा था कि मैं बाद में मांगूंगी, तो अब मांगने का समय आ गया है। तो दशरथ महाराज ने कहा, अवश्य मांगो। फिर कैकेयी ने कहा कि पहली बात, श्री राम की जगह भरत को आप युवराज नियुक्त करोगे और राजगद्दी में बिठाओगे कल ही। दूसरी बात, श्री राम को आप वनवास में भेज दोगे 14 वर्षों के लिए। दशरथ महाराज तो बेहोश होकर गिर पड़े। वो कहने लगे कि श्री राम तो मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु हैं, प्रिय व्यक्ति हैं। वो बेहोश हो गए, फिर से होश में आए, फिर बेहोश हो गए। जैसे होश में आए बहुत क्रोधित होकर डांटने लगे, भर्त्सना करने लगे कैकेयी के, लेकिन कैकेयी ने एक नहीं मानी। उनके कैकेयी के चरणों में पड़ के प्रार्थना करने लगे, फिर से बेहोश हो गए। ऐसे काफी समय तक, रात भर ये चलते रहा। दशरथ महाराज बेचारे वृद्ध अवस्था में कभी होश में आते, फिर से बेहोश हो पड़ते, लेकिन कैकेयी अटल रही, इच्छा बदली नहीं कैकेयी ने, हृदय पिघला नहीं, बहुत कठोर अपना हृदय को बना लिया था कैकेयी ने। उधर सुमंत्र सुबह को आए, हे राजन समय हो चुका है, वहां ब्राह्मण राहत देख रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय बीतते जा रहा है। तो कैकेयी ने सुमंत्र से कहा कि राम को बुलाओ। सुमंत्र सोचने लगे, कुछ तो यहां ठीक नहीं है। कहने लगे, राजा यदि आदेश दें तो मैं बुलाऊंगा। तो राजा ने कहा, हाँ राम को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कि राम को बुलाया गया राम उनके सामने आए कि क्या बात है पिताजी। तो दशरथ महाराज कुछ कह नहीं पाए, वो भी लेटे हुए थे और उनकी ऐसी दशा देखकर राम बड़े चिंतित हुए। लेकिन कैकेयी ने कहना शुरू किया कि हे राम, तुम्हारे पिताजी ने मुझे दो वरदान दिए थे और मैं ये मांग रही हूँ अभी तुमसे। तो तुम्हें वनवास जाना होगा और भरत को, मेरे पुत्र को, राजगद्दी पर बिठाना होगा। तो तुरंत इसी समय तुम यहां से निकल जाओ। अब श्री राम ने जैसे ही ये बातें सुनी, विचलित बिल्कुल नहीं हुए। कल्पना कीजिए, आज यदि ऐसे कोई बात होती तो क्या हुआ होता। छोटे छोटे हर घर में भी थोड़े से धन के लिए, धन के बंटवारे के लिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए, घर आदि के बंटवारे के लिए क्या नहीं होता है। भाइयों में, बहनों में, माता पिता के साथ युद्ध करते हैं थोड़े से धन आदि के लिए, जो इतना क्षणभंगुर है। श्री राम नियुक्त किए जाने वाले थे युवराज बनके और आगे चल के विश्व सम्राट होने वाले थे। सारे विश्व का ऐश्वर्य उनके कर कमलों में था, प्राप्त करने ही वाले थे। और अचानक ऐन वक्त पे उनको बताया गया कि आपको वनवास में जाना है। राजगति मिलेगी नहीं, वो एक बात है, लेकिन वनवास में जाना होगा। उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मधुर भाषी, मृदु भाषी, प्रियम वदः, ये है श्री राम। तो ऐसे ही मीठे बोली में श्री राम कहने लगे कि हे माते, मेरे पिता की ऐसी इच्छा है तो अवश्य मैं इसी समय निकल जाता हूं। मेरे लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी कि मेरे पिता के आदेश का मैं पालन करूं। और वैसे ही माते, मुझे दुख ये हो रहा है कि आपने पिता से क्यों कहलवाया। आप भी मुझसे कहती कि तुम वन में चले जाओ और भरत को राजगद्दी पे बिठाओ, बड़े खुशी से मैं करता ऐसे। आप तो मेरे माता हैं, आपको पूरा अधिकार है कहने के लिए। उधर दशरथ महाराज बहुत विचलित हो गए थे, बहुत रो रहे थे, कह रहे थे, राम से बात भी नहीं कर पाए। उधर बाहर लक्ष्मण खड़े थे, लक्ष्मण सुन रहे थे। लक्ष्मण आग बबूले हो गए क्रोध के कारण, परंतु कुछ कह नहीं पाए, अंदर नहीं आए थे। श्री राम ने कहा, तुरंत मैं जाके तैयारियां करता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। दशरथ महाराज की दशा क्या थी उस समय, हम कल्पना कर सकते हैं, शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। इतनी दुखदायक अवस्था थी उनकी। श्री राम वहां से निकल पड़े और ऐसे निकलने के बाद लक्ष्मण के पास आए, बड़े क्रोध में थे लक्ष्मण। कहने लगे, इसी समय मैं इस दुष्ट महाराज दशरथ की हत्या करूंगा, जो केवल एक रानी के वश में आके काम वासना के अधीन होकर ऐसे अन्याय करने के लिए सोचा है उन्होंने, तो ऐसे कभी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण को श्री रामचंद्र ने शांत कराया, अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या देवी भगवान नारायण की सेवा कर रही थीं, उनको भी खबर सुनाई। कौशल्या देवी को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या सुन रही हैं, बहुत दुखी हुई, वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। सीता को भी पता चल गया। जब घोषणा की श्री राम ने, तो सारी प्रजा में बातें भी फैलने लगी और सारे अयोध्या नगरी में हलचल मच गई कि ये सब क्या हो गया, ऐन वक्त पे ऐसे मोड़ कैसे हुई, ये घटना कहां से हुई। सब लोग कैकेयी को कोसने लगे आगे चल के क्या घटनाएं हुई और श्री राम वन में गए या नहीं गए। यदि आप ये जानना चाहते हैं और आगे की घटनाओं को सुनना चाहते हैं तो आप ठीक 7 बजे कल यहां पर उपस्थित रहिएगा। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।